नमस्ते, सुस्वागतम मेरे अजीज दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता देसाई आप सभी का इस लोकप्रिय कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हम सब बहुत खुश नसीब है क्योंकि आज के इस समारोह में हम सब डॉक्टर्स को मार्गदर्शन करने आई हैं आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नागपुर, यहाँ पुष्पा रानी दीदी जी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है और नागपुर क्षेत्र के सब जोन के संचालिका भी हैं। गए 56 साल से दीदी ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। दीदी, आज हम सब डॉक्टर्स बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। माना कि आप सब डॉक्टर्स पेशेंट्स को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने में दिन रात व्यस्त रहते हैं, परंतु इस तेज रफ्तार की जीवन शैली में आपको भी तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हम सब इस यांत्रिक युग का हिस्सा बन चुके हैं। तनाव, अशांति, परेशानी ये तो बस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लगता है हंसना, खिलखिलाना ये तो बस ख्वाब ही बन के रह गए। एंड इसी का अपने निजी जिंदगी पे फर्क आता है। तो ये तनाव कैसे कम करें, मन की शांति कैसे बरकरार रखें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम सब डॉक्टर्स के मन में हैं। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। चलिए अब देखते हैं ये सब डॉक्टर्स क्या प्रश्न लेके आए हैं। तो हमारे पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न पूछना है डॉक्टर अभिजीत भारद्वाज को।
दीदी, मेरा प्रश्न यह है, हम एक संस्था के साथ में काम कर रहे हैं, कुछ 25-30 लोग एक साथ काम करते हैं। हमारा यह अनुभव है कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग 2-3 साल में छोड़ के चले जाते हैं, तो इन लोगों को टिकाए रखने के लिए क्या करना चाहिए?
उसके लिए पहले तो उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस कारण से वो छोड़ना चाहते हैं उसके ऊपर हम ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है वो अपने मन की बात ना कह पाते हो। जरूर उनके पूछेंगे, उनकी जरूरतों पे ध्यान देंगे। दूसरा, अपने उस संस्थान का वातावरण, आपस में मेल मिलाप, वो हमको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां मनुष्य हर कार्य के लिए टिक जाता है। तो अगर वहां प्यार का वातावरण नहीं, संगठन का वातावरण नहीं, एक दो की हम प्रॉब्लम सुनने को अगर तैयार नहीं, तो उनको आकर मजबूर होकर छोड़ना पड़ता है। वैसे तो आज सबको जरूरत है, परंतु कुछ मजबूरियां ये भी आ जाती, इसलिए इसकी बहुत बहुत हमें आवश्यकता है उस संगठन को बनाए रखने के लिए।
ये किसी भी संगठन में एक दूसरे के लिए प्यार होना और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रैपो होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न किसको पूछना है। दूसरा प्रश्न पूछना है डॉक्टर प्राची तरसेकर को।
स्त्री को आजकल जो रोजमर्रा के जिंदगी में बच्चों को, परिवार को, प्रोफेशन को जो संभालना पड़ता है, उसके वजह से जो बहुत टेंशन बढ़ जाता है, तो उससे कैसे, रोज के टेंशन को कैसे निपटा जाए?
ये इस समय में एक कॉमन समस्या हो गई है। कोई भी फील्ड में हो, चाहे वर्किंग वूमेन हो, चाहे घर को संभालने वाली हो, चाहे डॉक्टर हो या एडवोकेट हो, जो भी हो, सबके लिए टेंशन की समस्या एक कॉमन हो गई है। इसका अर्थ ये भी नहीं कॉमन है तो इसको हम अवॉइड करें। हानिकारक भी उतनी ही है, क्योंकि आप इसका स्वयं परिणाम हमारे से अधिक जानते हैं। टेंशन का परिणाम सबसे पहले अपने ही तन पर पड़ता है। नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, कोई काम करने की दिल नहीं होता है, ऐसा लगता है अकेली बैठी रहूं। इसका परिणाम दूसरा फिर अपने परिवार पर पड़ जाता है, घर के वातावरण पर पड़ता है। इसलिए देखा जाए ये बहुत बहुत एक हानिकारक चीज है, इसलिए इसकी तरफ हमें अटेंशन दे करके हमें इसको निकालना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमको अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, क्योंकि परिवार में रहते हैं या कोई भी फील्ड में रहते हैं, जहां भी कार्य करते हैं, वो भी एक प्रकार से समाज से बदल करके एक परिवार बन जाता है, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो। उसमें हम एक तो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर हम अपने मन में ये बात रखेंगे, मैंने जो कहा वो ठीक, मैंने जो किया ठीक, दूसरे उसमें क्यों ऑब्जेक्शन लेते हैं, दूसरों का इसमें क्या जाता है, आधे आधे प्रश्न जब करते रहेंगे, ये प्रश्न आप दूसरों से नहीं करते हो, आप अपने आप से करते हो। अपने आप से करने के कारण आपके पास वो आंसर नहीं होता है, केवल प्रश्न 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 होता है। आंसर न होने के कारण, समाधान न मिलने के कारण हम टेंशन में आ जाते।
सच है, अपनी क्षमता खुद पहले बढ़ाओ तो फिर अपन अच्छा काम कर सकते हैं एंड फिर अपना टेंशन कम हो सकता है। तो चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पूछना है डॉक्टर शमा केदार जी को।
दीदी, आजकल जो फैशन के नाम पे जो अंग प्रदर्शन हो रहा है, उसके कारण अनैतिकता बहुत फैल रही है, इससे हम कैसे पार कर पाए, क्योंकि हर लड़की आजकल फैशन के पीछे भाग रही है, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहे
है। इसके लिए केवल हम समाज को दोषी नहीं बना सकते, समाज की हम भी एक इकाई है। कई बार हम भी फैशन को बढ़ावा देते हैं। कैसे? जब बच्चे छोटे होते हैं, हमको लगता है ये तो छोटे बच्चे हैं, उसको हम इस प्रकार के ड्रेस पहनाते हैं, पर जो जो वो बड़ा होता जाता है तो जो बचपन में पहनना सीखा है वो ही वो सीखता है, उसके वो संस्कार बनते जाते हैं। फिर इसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, ये प्रैक्टिकल की बात हम बता रहे हैं, अधिकतर घरों में होती है, बच्ची कुमारी बड़ी नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए हमारी जो भारतीय ड्रेस है वो हम नहीं पहनाते, जींस की आदत डालते हैं। तो सोचिए, बचपन में हमने पहनाया, फिर युवा होने पर वो पहनाया, तो बड़ी होकर के वो क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों के संस्कारों में भारतीय संस्कृति भरनी चाहिए। जैसे कोमल पौधे को हम बहुत प्यार से ध्यान से संभालते हैं, तो उस प्रकार से संभालेंगे तो बच्चे लाइन पर रहेंगे। तीसरी बात, हम स्वयं के ऊपर भी स्वयं कंट्रोल करें। अगर हम ही इससे बड़े होने के बावजूद भी उस प्रकार के पहनावा पहन लेते हैं तो बच्चे क्यों नहीं पहनेंगे। एक मां ने अपनी बच्ची को कहा, ऐसे ड्रेस मत पहनो, तो उसने कहा, आपने छोटेपन में क्या पहना है, आपने क्या किया, तो किसको फॉलो किया? माता गुरु। हम अपने मर्तबे को ना भूले। कहा जाता है मत भूल के तू एक मां है, मत भूल के तू एक मां है, तेरे हाथ में है संतान, चाहे तो इसे भगवान बना, चाहे तो इसे शैतान। क्षमा कीजिएगा, प्रश्न मेरा सुंदर है, पर जो प्रैक्टिकल परिस्थिति है उसके लिए कहा, इसलिए उनके संस्कारों में भारतीय संस्कृति भरो, ऐसी भरो जो कैसे भी अगर संघ में भी जाए, कॉलेजेस में जाएगी, वहां के भी ऐसे संघ मिलते हैं, पर उसको उस चीज से दूरी रहने की प्रेरणा मन से आती रहेगी। बचपन के संस्कार बड़े होकर के बहुत बड़ा काम करते हैं।
अगला प्रश्न पूछना है डॉक्टर निकिता हुड को।
नमस्ते दीदी। नकारात्मक सोच से कैसे निपटा जाए, ये मुझे पूछना था आपसे।
नकारात्मक शब्द कहते हैं तो उसके अगेंस्ट में कौन सा शब्द आता है?
सकारात्मक।
सकारात्मक में रहो तो नकारात्मक खत्म। अंधेरे को मिटाने का एक ही सहज साधन है, प्रकाश लाओ, अंधकार समाप्त। अगर हमारे शरीर में कोई कमजोरी है तो मां क्या करती, बच्चे को अच्छा भोजन देती है, शक्तिशाली भोजन देती है, एक्स्ट्रा भोजन देती है, टॉनिक देती है, तो जब शक्ति आ गई तो कमजोरी अपने आप खत्म। तो आज अगर कमी है तो हम सकारात्मक की ओर ना जा करके हमने अपनी दिशा को बदल दी है, तो वो उसके लिए चाहिए एक शक्ति, क्योंकि पानी गिरता सहज है, उसके लिए कोई आपको साधन नहीं अपनाना पड़ता है, पर अगर ऊपर चढ़ाना हो तो आपको मोटर लगानी पड़ती है। तो इसलिए एक सकारात्मक विचार के लिए कुछ ऐसी बातें दिमाग में भरिए, आध्यात्मिकता की बातें भरिए, कुछ ज्ञान की बातें भरी है, तो आपके ऑटोमेटिक वो संस्कार खत्म हो जाएंगे। फिर अपने मन में किसी के भी प्रति शुभ भावना हो, तो अगर किसी के प्रति अगर हमारी नफरत की भावना होगी तो नकारात्मक विचार चलाएगी, बदले लेने की भावना होगी तो नकारात्मक विचार चलेंगे। अगर इसी जगह हम हर एक के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, उनको ऊंचा उठाने की भावना, कंपटीशन ना हो उसकी भावनाएं, ये भावनाएं भर दोगे तो उसी के प्रति आपके पॉजिटिव अपने आप चलेंगे।
कितना सुंदर उदाहरण दिया दीदी आपने। कहते हैं ना, हर दीपक तले अंधेरा होता है, हर दीपक तले अंधेरा होता है, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पूछना है डॉक्टर सोनल को।
नमस्ते दीदी। मेरा प्रश्न यह है कि कई बार मन इम्पेशंस हो जाता है, पेशेंस नहीं रह पाते, तो किस तरह धैर्य को बढ़ावा दें?
धीरज हम तब खो बैठते हैं जब हमें समय का इंतजार करने नहीं आता है। कहा भी जाता है वेट एंड सी। हम समझते हैं कि जो मैंने आज काम किया है उसका इमीडिएट मुझे उसका फल मिले, मैंने अच्छा काम किया तुरंत मेरी महिमा हो, सब वाह वाह कहे, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है, तो हम समझते हम कितना करें कितना करें, फिर भी ऐसे ही करते। आप अच्छा कार्य करते चलिए करते चलिए। हमारे प्राचीन लोग कहा करते थे, नेकी कर कुएं में डाल, उसकी ओर देखो नहीं, उसके फल की आप चाहना नहीं करो। जब इमीडिएट फल की चाहना करते हैं तो क्या होता है, एक वृक्ष पे पहले कच्चा फल लगता है, पकने में थोड़ा टाइम लगता है। आप कहें नहीं मैं आज ही खाऊंगी, आज खाने वाले का कच्चा फल जो खाएगा गला उसी का खराब होगा। धीरज रखेंगे समय आने पर सब अच्छा हो जाएगा।
सही कहा दीदी आपने, इंतजार का फल मीठा होता है। अब देखते हैं डॉक्टर पल्लवी पांडे को क्या पूछना है।
मेरा प्रश्न है, मन बहुत चंचल होता है तो उसको उसकी एकाग्रता कैसे बढ़ाए।
ये भी वास्तव में देखा जाए सभी का ही ये प्रश्न है, क्योंकि कहा जाता है मन घोड़े से तीखा है, परंतु मन की लगाम हमारे हाथ में होगी तो जैसे घोड़े की लगाम अपने हाथ में होने से वो कंट्रोल में आ सकता है। अगर घोड़े की लगाम हाथ में नहीं होगी तो कहां से वो कंट्रोल होगा। इसलिए मन मेरा है, मैं कौन, पहले हम ये जाने। कहने में जैसे हम कहते हैं मेरी आंख मेरा मुख मेरा नाक मेरा कान, मेरा मेरा कहने वाला कौन, वो है इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति आत्मा। सबसे पहले हम उस स्मृति में रहे, वो स्मृति हमें हमारे मन को कंट्रोल करने में बहुत बहुत मुख्य पार्ट बजाती है। क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार से है, कुछ हमारा मन इधर उधर पिछले संस्कारों के कारण जाता है, कुछ बुद्धि द्वारा जो हम डिसीजन लेते हैं वो जाता है, कुछ आंखों के द्वारा जो देखते हैं उसमें जाता है, या कानों के द्वारा सुनते हैं उससे जाता है। इसलिए जब मन पे हमारा कंट्रोल होगा तो ये भी हमारा ऑटोमेटिक शरीर पर भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर मेरे शरीर पर कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने अपने कानों पर नहीं रखा, बिना मतलब की बातें सुनी तो मन चलेगा, जो काम नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर लिया तो मन चलेगा। तो मन हमारा व्यर्थ में ही जाता है, व्यर्थ सुनने में व्यर्थ बोलने में व्यर्थ कर्म करने में, वहां मन हिलता है। इसलिए मन की लगाम को अपने हाथ में रखो, उसके लिए पहले चाहिए आत्मस्मृति। मैं आत्मा यहां बैठ करके सब कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रही हूं। ड्राइवर अपनी सीट पे बैठता है पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, केवल अगर वो सीट छोड़ दे बाजू की सीट पे बैठ जाए तो क्या गाड़ी को कंट्रोल कर सकेगा। तो उसकी एक अपनी सीट है, तो वो सीट हम आत्मा की है या भ्रिकुटी के बीचों में, वो आत्मा स्मृति रखने से ऑटोमेटिक हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, तो हम योग्य ड्राइवर बने। ये गाड़ी है हमारी, शरीर भी गाड़ी है, तो जो होशियार ड्राइवर होगा वो कंट्रोल कर लेगा। हाँ, उसके लिए योगा ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो हमें एक मन को दिशा देता है। ये नहीं सोचो व्यर्थ, जो मेरे काम की चीज नहीं व्यर्थ, कोई नुकसान देने वाली चीज आपके सामने आ जाए, क्या उसको आप छूओगे? कोई भी हो, क्यों नहीं छूते? जानते छूने से नुकसान होगा। ऐसे मन में जो व्यर्थ आवे, इससे मेरा नुकसान है, छोड़ो, मन को दूसरे काम में लगा, जिससे काम मेरा भला हो, दूसरे का भला हो। कल्याण की भावना मन में रखोगे, आत्म स्वरूप में स्थित रहोगे, स्मृति में रहोगे मैं कौन, तो मन इजी कंट्रोल हो जाएगा।
ऐसी बात है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछना है डॉक्टर रिनी खुंगार को।
नमस्ते दीदी, मेरा प्रश्न था कि एक पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए और सही निर्णय तक कैसे पहुंचा जाए।
उसके लिए सबसे पहले ये न सोचे कि जो मैं काम कर रही हूं अपनी कमाई के लिए, कमर्शियल व्यू पहले खत्म, क्योंकि कमर्शियल एम अगर मन में रहती है ना, तो वहां सेवा भाव में कमी आ जाती है। पेशेंट डॉक्टर के पास बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ आता है, ये मुझे नया जीवन देगा। सच पूछो, अगर कोई डॉक्टर इतना दिल से पेशेंट की सेवा करता है तो पेशेंट के दिल से दुआएं निकलती हैं। जो दुआएं आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। कहते भी है ना, कुछ दवा कुछ दुआ, दवा से भी दुआ ज्यादा काम करती है। ये रहे इसको आराम, तड़फ रहा है, थोड़ा अधिक समय भी देना पड़े तो भी उसके दुख को कम करो। हमने देखा है ऐसे डॉक्टर हैं, भोजन कर रहे हैं, अचानक ऐसा पेशेंट आ जाता है, बीपी लो चला जाता है कोई भी कारणवश, तुरंत थाली छोड़ देते। कोई कहता है ये खाना तो खा लो फिर जाओ, इस समय मुझे किसी आदमी को जीए दान देना है। आज उसकी जीए दान देने की भावनाओं ने पेशेंट को अगर ठीक कर दिया, क्या उसकी दुआएं नहीं मिलेंगी? आप सुखों का त्याग करते हो ये भी हम जानते हैं, मेहनत भी करते हो, पर उसके बीच में एक स्नेह का भाव, रहम का भाव, न कि केवल डॉक्टरी पेशा, परंतु वो आपको नॉलेज मिली है अनेकों को सुख देने के लिए, थोड़ा उनके दिल से आप प्यार दीजिए, मीठे बोल बोल दीजिए। थोड़ा दो मिनट भी अगर आप देंगे तो पेशेंट का आधा दुख हल्का होता है।
कितना सुंदर उत्तर दिया दीदी आपने। सच है डॉक्टर्स, आप पेशेंट्स को मेडिसिन भी दो पर उसके साथ थोड़ी सिंपैथी भी दो। यू नो, आप सब डॉक्टर्स अलग अलग पथी के हैं, एलोपैथी होम्योपैथी, तो ये सब पथी के साथ आप यदि सिंपैथी भी पेशेंट्स को देते हैं तो आप पेशेंट्स को दवा देते हैं और पेशेंट्स आपको दुआएं देते हैं। चलो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछना है डॉक्टर पूनम हुडिया को।
नमस्ते दीदी। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि तनावग्रस्त होने के बाद में किसी दिन कोई ऐसा वक्त आता है जब दिमाग एकदम स्तब्ध हो जाता है, कुछ काम नहीं आता है, ऐसा लगता है अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। उस वक्त अपने मन को वापस लाके अपने कार्य में वापस जुटने के लिए मैंने क्या करना चाहिए?
इसके लिए अगर यथा संभव हो तो पहले जो आपके मन के पर बोझ है उसको योग्य स्थान पर हल्का करो। ये इसी स्थिति तब होती है जब कोई भी बात, नेगेटिव बात, कोई समस्या हम अपने अंदर कर रख लेते हैं, वो समस्या घर बना लेती है। वो निकल नहीं सकती है फिर। इसलिए पहले दिल को हल्का करिए। जैसे कि देखो कभी कभी कहते हैं, कभी कुछ ऐसे ना तो या तो खूब हंस लो या तो खूब रो लो। तो ये क्या होता है, उससे मन हल्का होता है। पर हम यहां रोने की बात नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कोई के जहां विश्वास हो, जो आपको गाइड बराबर कर सके, सब जगह नहीं, वहां अपने दिल की बात को कहिए, लाइट हो जाइए। बात देने के बाद, सुनाने के बाद आप बिल्कुल वो बोझ खत्म कर दो, एक तो व्यक्ति को सुना के, दूसरा ईश्वर पर छोड़ दो, भरोसा ईश्वर के ऊपर रखो। तो जब भरोसा उधर रखेंगे, इधर दिल को हल्का कर देंगे, तो आपकी ऑटोमेटिक दिल ऐसा लाइट होगा जो आपका रुचि दूसरे काम करने में लग जाए।
सब डॉक्टर्स ने ये याद रखना चाहिए कि मन की एकाग्रता के लिए काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और ये जो मिस्टर झाल रहते हैं ना, उनकी संगत छोड़ना है। ये मिस्टर झाल यानी जेलसी, हेट्रेड, एंगर एंड लेग पुलिंग। आज प्रश्नों की लंबी लिस्ट है, पर समय की कमी के कारण हम अभी आपको अलविदा कहना चाहेंगे। आज दीदी ने कितनी सहजता और प्यार से हमारे सब प्रश्नों के सरल उत्तर दिए हैं। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और मुझे विश्वास है कि दीदी का ये कीमती और खूबसूरत मार्गदर्शन आप सभी दर्शकों के लिए और आप सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित होगा। तो अब आपकी इजाजत लेते हैं और ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दीदी, शब्बा खैर।